श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 25 श्लोक संख्या 7 दिनांक 22 अगस्त 2015 स्पीकर हिज ग्रेस कमल लोचन प्रभु।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। इंद्र क्रोधवश, मूर्खतावश, अहंकारवश कुछ श्लोकों को उच्चारण कर रहा है। पिछली बार हमने क्लास दिया था, दूसरा श्लोक था जिसके अंदर वर्णन किया जा रहा था कि किस प्रकार इंद्र को क्या था, अहंकार। यह अहंकार जो है हमको मूर्ख बनाता है और मूर्ख व्यक्ति क्रोधित होता है। ये तीन चीजों के ऊपर हमने बड़े विस्तार से चर्चा किया और नंद महाराज और अन्य उपनंद इत्यादि सब ब्रजवासियों को गोवर्धन को पूजा करते हुए देख के इंद्र बड़े क्रोध में उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया और संवर्तक को बुलाया। सबसे पहला संवर्तक बादल वोग हैं जो मेघानाम चांतकारिणम, जो विनाश के समय प्रलय के समय जो सारा जगत को अंतकारिणम सारे जगत को नाश करने वाली जो बादल है, संवर्तकम नाम, संवर्तक जिसका नाम है उनको बुलाया। बुला के सीधा उन्होंने आदेश नहीं दिया, तुम जाओ जाके व्रज में जाके बारिश बरसाओ। अपना क्रोध को व्यक्त करने के लिए कुछ श्लोकों को उच्चारण किया और इन श्लोकों के पीछे बहुत गहरा रहस्य है। सार रूप में हम तीसरा श्लोक से ये रहस्यों को जानने के लिए प्रयास करेंगे। वैसे इंद्र जो है वो कृष्ण को और ब्रजवासियों को बहुत गाली दे रहा था, अपशब्द इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फिर भी इन शब्दों के पीछे जो इंद्र ने इस्तेमाल किया उसके पीछे सारस्वत अर्थ करके कुछ है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि सरस्वती देवी किसी को भी भगवान को अपमान करने नहीं देती है। ये सरस्वती देवी का विशेषता है। जहां जहां भगवान की या भक्तों की निंदा शास्त्रों में हुई है उधर आचार्यों ने उन निंदा को एक दूसरा रूप लेके दूसरा अर्थ लेके ये समझाया, ये निंदा नहीं बल्कि स्तुति है। वो निंदा को स्तुति के रूप में स्वीकार करते हुए सरस्वती देवी का अर्थ बता दे इस संस्करण में सारस्वत अर्थ। तो तीसरा श्लोक में सबसे पहला इंद्र ने कहा अहो श्रीमदा महात्म्यम, श्रीमदा उनके संपत्ति के वजह से वो बहुत मद हो गए, उनका गर्वित हो गए। किसका, किसके अंदर अहंकार आ गया, गोपानाम कामानुक्षम, ये गोप लोगों को इतना उनके अंदर अहंकार भर गया है। वो लोग क्या किया, कृष्णम मृत्युम उपाश्रित किया ये चक्रु देव हेड़नम। तो उन्होंने कहा देखो ये जितने भी लोग हैं ना ऐसे जंगल में रहने वाले लोग और उनकी समृद्धि मेरी वजह से बड़ी है, मैं बारिश देता हूं, मेरी बारिश की वजह से उनको घास उगता है, घास जब गाय खाता है उसकी समृद्धि है, और ये समृद्धि की वजह से क्या हो गया, उनको अहंकार हो गया। तो इस अहंकार में मूर्ख हो गए, मूर्ख हो गए क्या किया उन लोगों ने, कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित किया। कृष्ण एक साधारण सा मर्त्य, मर्त्य मतलब साधारण सा व्यक्ति, एक मनुष्य जो मरने वाला है। कृष्णम मृत्युम उपाश्रित किया, ये लोग क्या किए, जितने भी देवता लोग हैं उनको वो लोगों ने, जितने भी ब्रजवासी हैं वो लोगों ने अपराध किया हमारे प्रति। एक साधारण सा मनुष्य का शरण लेके हमारा पूजा बंद किया, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य देखो। तभी सबसे पहला ये श्लोक का सारस्वत अर्थ क्या है वो जानने के लिए प्रयास करेंगे। हम गिनते जाएंगे कितने सारस्वत अर्थ है। सबसे पहला अहो शब्द का सारस्वत अर्थ क्या है, अहो श्री मद महात्म्यम। तो इंद्र देखा, क्या देखा उन्होंने? ब्रजवासियों के अंदर समृद्धि देखा। समृद्धि देख के एक प्रकार के उनके हृदय में आश्चर्य उनका अनुभूति हुआ। अस्टानिश मतलब उनको एक बड़ा सा आश्चर्य हुआ। तो आश्चर्य में इंद्र क्या कर रहा है? मर्त्यम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्या। तो कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्या, तो कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्या का अर्थ क्या है? तो ये मर्त्यम शब्द का अर्थ है, क्यों कृष्ण को मर्त्यम करके क्यों संबोधित किया है? क्योंकि भगवान कौन है? श्रीपति लक्ष्मीपति। उनको ये बौद्धिक जगत से कुछ देना देना नहीं है, लेकिन भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। प्रकट होके क्या करते हैं? इस जगत के अज्ञानी लोग, इस जगत के जो लोग कृष्ण को भूल चुके हैं और अनेकों अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव कर रहे हैं, वैसे लोगों को शुभ प्रदान करने के लिए आते, इसलिए कृष्ण को ही मर्त्यम कहा गया है। इस भौतिक जगत को अशुभात कहा गया, भगवद गीता में दो जगह कहा गया है। तो ये अशुभात या शुभ भौतिक जगत में स्वयं भगवान प्रकट होते हैं और इन अशुभ भौतिक जगत में शुभता को प्रदान करते हैं। ये मर्त्य लोक में आए हैं कृष्ण, इसलिए उनको मर्त्यम कहा गया है। तो इसको ये सारस्वत अर्थ है। तो इस श्लोक में दो सारस्वत अर्थ है, जिसके अंदर एक है अहो, एक ऐसे देखा जाए इंद्र क्रोध में देखो इन लोगों का, ये हेलना के रूप में देख रहे हैं। दूसरा क्या? आश्चर्य के रूप में, अहो का आश्चर्यात्मक है सारस्वत अर्थ। दूसरा क्या है? मर्त्यम, कृष्ण को मर्त्यम इसलिए संबोधित किया गया कि एक तरीके से देखा है साधारण सा मनुष्य है, लेकिन सारस्वत अर्थ के अनुसार क्या है? मर्त्यम का अर्थ क्या है कि ये जो अशुभ भौतिक जगत में मृत्यु लोक में भगवान प्रकट होते हैं और शुभता सबको प्रदान करते हैं। ये तीसरे श्लोक में दो सारस्वत अर्थ हुए। अब ये चौथे श्लोक में देखें, यथार्थे ही काम मर्त्ये ही कर्तृभिः नाम नौ निभिः विद्याम अन्वेषिकीं हित्वा तितीर्षन्ति भवार्णवम्। इंद्र क्रोध में कृष्ण को और डांट रहे हैं, ब्रजवासियों को भी डांट रहे हैं। देखो ये हमारा शरण छोड़ के, यानी देवताओं का, हमारा इंद्र कहता हमारा मेरा शरण छोड़ के ये लोग कृष्ण का शरण लिए हैं। ये वैसे प्रयास है जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान को त्याग करके जो भौतिक संसार के सागर को पार करना चाहते हैं। किसके द्वारा पार करना चाहते हैं? जो कर्मकांड के द्वारा। विद्याम अन्वेषिकीम हित्वा, अन्वेषिकीम शब्द बहुत गहरा शब्द है। अन्वेषिकी मतलब विश्लेषात्मक ज्ञान, एनालिटिकल नॉलेज। तो विद्याम अन्वेषिकीम हित्वा आध्यात्मिक ज्ञान को त्याग करके तितीर्षन्ति भवार्णवम्, भवसागर को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। कर्तृहि नाम नौ निभिः, जो अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ कर्म कांड के द्वारा कोई भवसागर को पार कर सकता है? नहीं कर सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान छोड़ के कर्मकांड के द्वारा अगर कोई भौतिक संसार को पार करने की व्यवस्था है, इंद्र इस्तेमाल कर रहा है बड़ा बड़ा कुछ दार्शनिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। और उन्होंने कहा ये जो इन लोगों का प्रयास जो है मेरा शरण छोड़ के एक मर्त्यम, एक साधारण बच्चे का शरण लेके वो सोच रहे कि वो उद्धार हो जाएगा उनका, वो कभी नहीं होने वाला है। जिस प्रकार कर्मकांड या ज्ञान को छोड़ के कर्मकांड के द्वारा कोई पार कर सकता है? नहीं कर सकता है। अभी देखिए सरस्वती सारस्वत अर्थ क्या है। तो सारस्वत अर्थ मतलब क्या है? सरस्वती जी किस अर्थ को ले रही इधर? सरस्वती जी इस अर्थ को ले रही, कृष्ण कहता है देखो ये व्रजवासी जो है उनके लिए भवसागर क्या बन गया है? आसानी से जैसे बछड़े के खुर के जो निशान जो पानी जम जाता है उसमें से पार करना जितना आसान उतना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो इम्पर्सनल आध्यात्मिक ज्ञान, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान जो जो निर्विशेष ब्रह्म को इंगित करने वाला जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको त्याग करके ये लोगों ने क्या किया? कृष्ण का शरण लिया। इसकी वजह से क्या हुआ? पूरा जो सागर है ब्रजवासियों के लिए इतना आसान हो गया, आसानी से पार कर सकते हैं। जैसे बछड़े के खुर में जितनी पानी जमा रहता है उतना पानी को पार करना कितना आसान है, उतना आसान हो गया। तो एक तरीके से देखा जाए वही संस्कृत श्लोक है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए ये इंद्र अवहेलना कर रहा है ब्रजवासियों का। दूसरे तरीके से देखा जाए सरस्वती के शब्द सरस्वती के दृष्टिकोण से देखा जाए इंद्र जो है वो ब्रजवासियों गुणगान कर रहा है। ये चौथे श्लोक में, या अभी तक तीन सारस्वत अर्थ है और चौथे सारस्वत अर्थ या 25वें श्लोक में और सारस्वत अर्थों को वर्णन करते हैं। इंद्र बाद में कहा वाचलम बालिशम शब्दम, सीधा शुरू कर दिया कृष्ण को डांटना। वाचलम बालिशम शब्दम मज्ञम पंडितवानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्या गोपा मे चकुतु अप्रिय अभियम अप्रियम। सबसे पहला उन्होंने कहा वाचलम बालिशम स्तब्धम, वाचलम मतलब बड़बड़ करने वाला। इंद्र क्या बोल रहा है, इंद्र बोल रहे हैं कि ये कृष्ण जो है बड़बड़ करने वाला है। वाचलम बालिशम एक मूर्ख है, बालक मतलब मूर्ख है, बच्चा है। स्तब्धम ये एकदम हटी रहता है बच्चा, वो मानने के लिए तैयार नहीं, एकदम हट पकड़ के बैठा है। अज्ञम मूर्ख व्यक्ति है, ज्ञानी नहीं उनके पास। पंडित मानम इतना अज्ञानी है लेकिन वैज्ञानिक तो जैसा रहो, अपने आप पंडित मानता है। कृष्णम मर्त्य उपाश्रित्या वापस मर्त्यम से दिशाल के वापस ये व्रजवासी ने क्या किया, मृत्यु उपाश्रित्या ये मरने वाला व्यक्ति कृष्ण को उन्होंने आश्रय लिए। गोपा में चक्रु अप्रियम, देखो ये लोग जो है ये गोप लोग ने मेरा मेरे लिए अप्रिय मुझे मुझे अप्रसन्न करने वाला कार्य किया। अभी ऐसा लगता है कि इधर इंद्र जो है कृष्ण को डांट रहे हैं या गाली दे रहे हैं, अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सरस्वती देवी कुछ और अर्थ लेती है। सरस्वती देवी क्या अर्थ ले रही है कि बालिशम वाचलम, वाचलम बालिशम ये दोनों को मिला के करते हैं कि ये जो बालिशम जो मूर्ख होते हैं और अज्ञानी होते हैं, और ऐसे अज्ञानी लोगों को कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपनी वाचलम के द्वारा अपनी वाणी के द्वारा उनको उद्धार कर रहे हैं। कृष्ण की अपार करुणा है, वो स्वयं आके क्या कर रहे हैं इधर, ये जो अज्ञानी लोग हैं बालक जैसे लोग हैं मूर्ख लोग हैं उनको उद्धार कर रहे हैं। कृष्ण की विशेष कृपा है कि बालक जैसे लोग भी क्या करने लग जाते हैं, कृष्ण का शरण लेते हुए बड़े बड़े वैदिक साहित्यों का वर्णन भी कर सकते हैं। मूर्खो पितारेश्य सिद्धांत सागरम, और भी हम जानते हैं ना कि पंगुम लंगायते गिरिम मुखम करोति वाचालम, उसी प्रकार का इधर बात कर रहे हैं कि ये जो बालक लोग भी सिद्धांत की बातों को चर्चा करने लग जाते हैं, तो ये कृष्ण का विशेषता है। बाद में स्तब्धम, स्तब्धम का अर्थ क्या है, ऐसे देखा जाए इंद्र के दृष्टिकोण से हटी व्यक्ति, लेकिन स्तब्धम का और एक अर्थ ये है इधर कृष्ण किसी के सामने झुकते नहीं है। क्यों, उनको झुकने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उनसे बढ़कर कोई है नहीं। तत्समस्त दृश्यते, कोई उनके समान नहीं है, कोई उनके परे नहीं। और उनके समान नहीं उनके परे नहीं तो क्या, कोई जरूरत नहीं उनको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। स्तब्धम, और बाद में अज्ञम, स्तब्धम के बाद और एक शब्द आया अज्ञम। अज्ञम का ये दूसरा अर्थ ये करते हैं कि अज्ञानी है, ये कोई जानता नहीं है। और अज्ञम का और एक अर्थ है, सारस्वत अर्थ है, ऐसा कोई चीज नहीं वो जानता नहीं है। अज्ञम का ये दो अर्थ है। जो सरस्वती के अनुसार क्या है, अज्ञम शब्द का अर्थ क्या है कि ऐसा कोई चीज नहीं है जो कृष्ण जानते नहीं। और इंद्र सोच रहा है अज्ञम के द्वारा मैं इनको कह रहा हूं कि ये कोई कुछ नहीं जानता है। तो अज्ञम पंडितमानिनम, लेकिन इंद्र की दृष्टिकोण से क्या है, ये बालक है बच्चा है लेकिन बड़ा पंडित मानता है। लेकिन उसी बात को सरस्वती जी कुछ और अर्थ लेती है, क्या लेती है कि ये अज्ञम है, सब कुछ जानता है, इसके वजह से पंडित मान, बड़े बड़े पंडित लोग उनकी मान सम्मान करते, उनकी मानते हैं। देखो एक ही शब्द है लेकिन दो अर्थ है। बाद में पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्या गोपामे चक्रु, कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्या, ये मर्त्यम का अर्थ क्या है, मुझे छोड़ के ये लोगों ने एक साधारण सा बालक को लोगों ने स्वीकार किया। तो सरस्वती जी कहती हैं कि मर्त्यम शब्द का पहले ही हो चुका है कि भगवान स्वयं इस मृत्युलोक में आते हैं, आके इस मृत्युलोक में जो बद्ध जीव है उनको उद्धार करने के लिए आते हैं, इसकी वजह से ये मर्त्यम शब्द जो है भगवान की अनुकंपा उनकी दया को सूचित किया जा रहा है। तो इस प्रकार पांचवें श्लोक में इंद्र का वापस, जो वैसे इंद्र के श्लोकों का एक अर्थ लिया जाए इंद्र के दृष्टिकोण से कृष्ण को डांट है, कृष्ण को गाली दिया जा रहा है, अपशब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से क्या है, इंद्र जो है कृष्ण का गुणगान कर रहा है। तो बाद में छठे श्लोक में इंद्र ने कहा एषाम श्रियावलिप्तानाम, ये सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं श्रियावलिप्तानाम, ये अपने जो ऐश्वर्य की वजह से उनको बहुत अहंकार हो चुका है, और दूसरा क्या है, और कृष्ण ने क्या है, कृष्णेनाधम अभियताम, ये जो कृष्ण के बातों के द्वारा बह गए लोग क्या करो, धुनोता श्रीमद स्तब्धम। तो इंद्र ने आज्ञा दिया किसको, संवर्तक बादल को, धुनोता धो डालो उसको, यानी उसको खत्म करो, इन किसको धो डालो, श्रीमद स्तब्धम पशु नस्यत संक्षयम, जाके तुम उनको मद को, उनका ईश्वरी को नाश कर दो, उनका अहंकार को नाश करो, साथ साथ में क्या करो, पशुओं को भी तुम मार दो। तो देखा जाए श्रिया अवलिप्ता नाम दर, सरस्वती देवी कुछ और अर्थ लेती है, श्रिया अवलिप्ता नाम करती है कि ये जो रजवासी हैं उनके शरीर में चंदन का लेप है, और क्या करो तुम जाओ और उसको आप और बारिश बरसा के उनके शरीर में जो गर्मी है उसको शांत करो, उनको ठंडक पहुंचाओ, उनको शांत, उनको सुख पहुंचाओ, और सम्यक क्षयम क्या करो, भगवान क्या करने वाले हैं, इंद्र को मालूम है अगर तुम जाओगे हे संवर्तक, इंद्र जो है गोवर्धन को उठाने वाले हैं, उठा के जब उठाएंगे तो सम्यक क्षेम, सम्यक मतलब सभी लोगों के लिए एक आश्रय बनने वाला है गोवर्धन, इसलिए उस गोवर्धन धारण करने की लीला है हम सबको देखना है, इसलिए संवर्तक तुम जल्दी जाओ और बारिश गिराओ, वैसे लोगों को ठंडक भी मिलेगी और गोवर्धन उठाएंगे कृष्ण और सबको आश्रय भी मिलेगा। अब देखो ये जो श्लोकों में इंद्र एक दृष्टिकोण से कहता है लेकिन सरस्वती जी कुछ और दृष्टिकोण से कह रही है। अब इंद्र का यह आखिरी श्लोक है जिसके अंदर उन्होंने कहा अहम चैवा चैरावतम नागम, वैसे इंद्र की बातें सुन के संवर्तक बादल को डर लगा, दो चीज का डर लगा उनको, एक डर था अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इंद्र मुझे मार देगा, इंद्र से डर था, दूसरा अगर मैं व्रज में जाऊंगा जाके व्रजवासियों के प्रति अपराध करूंगा तो कृष्ण मुझे मार देंगे या उनके प्रति अपराध हो जाएगा, ये दोनों का डर था। तो डर के मारे एक भयभीत था कौन, संवर्तक, उस भयभीत संवर्तक को देख के इंद्र श्लोक को उच्चारण कर रहा है, तुमने कहा कि तुम बहुत डर गए लगता है, चिंता मत करो, अहम मैं स्वयं क्या करूंगा, चा चा मतलब मेरे तुम्हारे साथ में तुम्हारे बाद में आऊंगा, कैसे आऊंगा, ऐरावतम नागम, ऐरावत के ऊपर चढ़ के आऊंगा, अगर तुमको कुछ होगा कृष्ण व्रजवास से कुछ करेगा चिंता मत करो, मैं हूं, मैं पीछे पीछे आऊंगा। आरुह्यानुव्रजे व्रजम, अनुव्रजे व्रजम, तुम व्रज में जाओगे और तुम्हारे पीछे पीछे, अनुव्रजे मतलब पीछे पीछे चलना, तुम्हारे पीछे पीछे चलते हुए व्रज में मैं आऊंगा, और साथ में भी क्या लेके आऊंगा मालूम है, मरुद्गणेर महावेगेर, मरुद्गणों को साथ में लेके आऊंगा, जो महावेगेर अगर कुछ भी तुमको कुछ करने के लिए प्रयास करेंगे, ये मरुदगण क्या करेंगे, तुमको साथ में उठा के कहीं और लेके जाएंगे, तुमको सुरक्षा पहुंचाएंगे, चिंता मत करो। नंद घोष्ट जिघांसया मतलब क्या है, ये नंद महाराज के जितने भी ये हैं उन सबको क्या करो, खत्म कर दो, डिस्ट्रॉयड। तो इंद्र का इस प्रकार के शब्द थे, क्योंकि भयभीत संवर्तक को देख के इंद्र ने श्लोक को उच्चारण किया। इंद्र ने श्लोक को उच्चारण किया, ये श्लोक का एक सारस्वत अर्थ ये है। सारस्वत ये थे, अहम च ऐरावतम नागम, पिछले श्लोक में वर्णन किया गया है कि ये आप जाके बारिश बरसाओ, जैसे बारिश आएगी सब ब्रजवासी को ठंडक मिलेगी, ठंडक मिलेगी, और कृष्ण गोवर्धन उठाने वाले हैं, को जब कृष्ण गोवर्धन उठाने वाले सबको आश्रय मिलेगी, इतना बड़ा सुंदर दृश्य होगा ना। हाँ, तुम पहले जाके सब सीन सेटिंग करना, मैं क्या करूंगा, चा मैं भी, अहम चा मतलब मैं भी क्या करूंगा, ऐरावत के ऊपर आके ऐरावत को भी दर्शन कराऊंगा। क्या दर्शन कराऊंगा, ये सुंदर लीला का दर्शन कराऊंगा। आरुह्यानु व्रजे व्रजम, इतना ही नहीं, अगर आप ठंडक पहुंचाओगे, जब व्यक्ति को और ठंडक चाहिए तो हवा की भी आवश्यकता है, हवा भी एकदम सुंदर अच्छी तरीके से बहेगी। और नंद गोष्ट जिघासया, इसका मतलब क्या है, मेरे अंदर इतना उत्सुकता है। जिघांसया, जिघांसया का और एक अर्थ है कि मैं देखना चाहता हूं, यानी इंद्र इस श्लोक में सारस्वत अर्थ के अनुसार देखा जाए अपनी उत्सुकता को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या उत्सुकता, मुझे कृष्ण की लीला का दर्शन करना है, खास करके गोवर्धन धारण करने की लीला है, उसको दर्शन करने की बहुत उत्सुकता है मेरे अंदर। इस उत्सुकता को इंद्र प्रदर्शित कर रहे हैं। वैसे देखा जाए इंद्र तो उनको डांट रहे हैं, उनको जाके मारो वो करो कह रहे हैं, लेकिन सरस्वती देवी जो है ये इंद्र के शब्दों को ही दूसरा अर्थ लेके व्रजवासियां कृष्ण का भी गुणगान का वर्णन हो रहा है। अभी देखिए, ये केवल इधर ही नहीं, भागवतम में अनेकों अनेकों जगह, भगवद गीता में भी अनेकों अनेकों जगह ये सारस्वत अर्थ लिया जाता है। ये सारस्वत अर्थ मतलब वो अर्थ जो सरस्वती देवी के द्वारा वो प्रकाशित हुआ है, या जो अर्थ सरस्वती देवी लेती हैं। देखिए, कोई भी शब्द अगर कोई इस्तेमाल करता है, कोई भी बात कोई करता है, ये तभी कर सकता है जब सरस्वती का कृपा हो। सरस्वती हमारे जिह्वा की या वाक देवी है, उनके अनुमति के बिना कोई एक शब्द उच्चारण नहीं कर सकता, एक बात भी नहीं कह सकता है। और सरस्वती देवी जो है कौन है, वो कृष्ण की भक्त है, और किसी को वो अपशब्द, कृष्ण के बारे में अपशब्द कहने नहीं देती है। इधर ही नहीं, जब हिरण्यकश्यपु ने गाली देना शुरू किया उस समय भी हम देखते हैं कि सारस्वत अर्थ दिखाया गया है। भगवद गीता में शुरुआत में सारस्वत अर्थ है, जहां धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत उत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुरुत संजयम्, पहले श्लोक में पहले ही लाइन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पूरा भगवद गीता समाप्त हो गया। सरस्वती देवी क्या कहती है, क्षेत्र मतलब क्या है, एक खेती, और कौन सी खेती है, धर्म की खेती है, और उधर क्या होगा, कृष्ण स्वयं खड़े हैं। तो अधर्म धर्म की खेती में जो धर्म के अधिष्ठान देव स्वयं कृष्ण हैं, तो क्या करेंगे, अधर्म को क्या करेंगे, उखाड़ के फेंकने वाले हैं। इससे क्या पता लगता है कि पहले ही लाइन में धृतराष्ट्र ने कह दिया कि मेरे बच्चों का मृत्यु होने वाला है, पांडवों का जीत होने वाला है, ये सारस्वत अर्थ है। तो ऐसे भगवदगीता में भी अनेकों अनेकों जगह ये सारस्वत अर्थ पाया जाता है, भागवत में भी ये सारस्वत अर्थ पाया जाता है। खास करके ये जो लीला है, बड़ा अद्भुत लीला है, जो इंद्र की अहंकार को नाश करने के लिए वर्णन किया गया है। लेकिन आप सब देखिए, ये जो लीला में भगवान के शुद्ध भक्त व्रजवासियों को मारने के लिए तत्पर था कौन, इंद्र। लेकिन पूरा लीला समाप्त होने के बाद इंद्र को पर भगवान बड़े प्रसन्न थे। ऐसा कैसे भाई, क्यों प्रसन्न थे, इसके विषय में पहले हमने कहा आपको कि प्रसन्नता इसके इसलिए थी क्योंकि कृष्ण को बड़ा आनंद आया, 7 दिन 7 रात तक सारे मेरे भक्त एकदम मेरे निकट थे, और वेरी सो क्लोज टू मी। मेरे इतने निकट आया, इसका कारण, इसके पीछे कौन कारण है? इंद्र कारण है। इसलिए भले इंद्र का अपराध अगर देखा जाए, सबसे बड़ा अपराध था ब्रह्मा जी का, अपराध से ज्यादा अपराध इंद्र का था। ब्रह्मा जी ने खाली व्रजवासियों में ग्वाल बालों को, बछड़ों को चुराया था, लेकिन इंद्र ने मारने के लिए सोचा। तो देखा जाए किसका अपराध ज्यादा है? इंद्र का अपराध ज्यादा है। इंद्र का अपराध ज्यादा होने पर भी कृष्ण जो है वो इंद्र के ऊपर बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि ब्रह्मा जी का अपराध की वजह से कृष्ण को ग्वाल बालों से दूर रहना पड़ा। लेकिन इधर इंद्र के अपराध की वजह से सारे बछड़े जितने भी हैं, ग्वाल बाल है, जितने भी सारे ब्रजवासी कृष्ण के एकदम बिल्कुल नजदीक आए। इसकी वजह से ब्रह्मा जी से बात भी नहीं किया, बड़े बड़े लंबा चौड़ा प्रार्थना करने के बाद भी कृष्ण ने ज्यादा बात नहीं किया। लेकिन इंद्र की प्रार्थनाओं में हम देखते हैं इंद्र ही बात किया, कृष्ण बड़े प्रसन्न थे, उनका हसमुख थे कृष्ण इंद्र के ऊपर। तो इंद्र के जो शब्द हैं, अहम चैवा चैरावतम नागम, ऐरावत के ऊपर आऊंगा, आरुह यारु व्रजे व्रजम, तुम जाओ पहले, पीछे पीछे मैं आऊंगा, मरुद्गणों को भी साथ पिलाऊंगा, क्योंकि एकदम बिल्कुल बारिश में भीग गए और उसके बाद थोड़ा सा हल्की हवा चलेगी तो इनको बहुत आनंद मिलेगा। और साथ साथ में ये भी है, मेरे अंदर बहुत तीव्र इच्छा है कृष्ण का ये जो दिव्य लीला है वो दर्शन करने की। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है। आगे हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं किस प्रकार संवर्तक बादल व्रज में जाके किस प्रकार का भयानक सा वर्षा बरसाया। आगे की लीला हम आगे ही देखते हैं। तो हम कुछ दिनों से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमारा मंदिर भी एक प्रकार का गोवर्धन है। तो भगवान ने उठाया, हम सब शरण लिए। भगवान का जब शरण लेते हैं तो उसमें अस्तित्व में हमको शीतलता प्राप्त होती है। जैसे अभी इंद्र हम देख रहे हैं, वो बहुत उत्सुक है कृष्ण की लीला को दर्शन करने के लिए। भले ही वो अपने, ऐसा देखा जाए बाहर से वो गाली दे रहा है, डांट रहा है कृष्ण को, लेकिन सारस्वत अर्थ जो है वो कुछ और है। वो कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। कभी कभी ऐसा लगता है हमारे भौतिक जगत में भी, आप इधर जीवन में भी कभी क्या ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है, हमको ऐसा लगता है गलत हो रहा है, लेकिन वो भी कृष्ण के नियंत्रण में हो रहा है। उसका भी परिणाम ही कभी अच्छा होता है। वॉट एवर में हैपन, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी कुछ होता है इस जगत में सब कुछ कृष्ण की इच्छा से होता है, अनुमति से होता है। उसका कुछ ना कुछ परिणाम अच्छा ही होगा। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखोगे, हर वस्तु का परिणाम, हर वस्तु का, हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ही है, वो देख सकते हैं। अगर भौतिक दृष्टिकोण है, आप कितना भी अच्छाई देखोगे उसके अंदर आप दोष देखोगे, मेड यू विल सी समथिंग बैड। देखिए सरस्वती देवी इंद्र का डांट है, लेकिन उसको क्या ले रही है? उसको पॉजिटिवली ले रही है, लेकिन तो वैसे ही अनेकों कार्य, या अच्छा हुआ है बुरा हुआ है इस जगत में, या कोई भी कार्य में हम अच्छा या बुरा देखते हैं, लेकिन दोनों के पीछे दिव्यता को नहीं देखते। जब तक हम दिव्यता को देखने का आदत नहीं डालेंगे तब तक ही हमें अच्छा बुरा में फंस जाएंगे, सही गलत में फंस जाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट रूप में कह दिया, ए भाल ए मंद ए सब भ्रम। ये भाल मतलब ये अच्छा, हाँ, और ये मंद, ये गलत, ये सही खराब है, ये सब भ्रम है। इस भौतिक जगत का अच्छा भी खराब है और बुरा भी खराब है, सही भी खराब है और गलत भी खराब है। एक ही चीज है, वो है दिव्य। दिव्य चीज हमको अच्छा लगे बुरा लगे, सही लगे गलत लगे, दिव्य चीज हमेशा दिव्य होता है। भौतिक चीज अच्छा लगे बुरा लगे, सही हो गलत हो, भौतिक है। इसलिए भक्तों को दिव्य स्तर में विचार रखना चाहिए। दिव्य स्तर का विचार तब तक नहीं रहता है तब तक इस भौतिक जगत के सही गलत अच्छा बुरा में फंस जाएंगे, भ्रम में ही रहेंगे। तो ये मंदिर के संबंध में, कृष्ण के संबंध में सब कुछ अच्छा है, और खराब भी अच्छा है और गलत भी अच्छा है, लेकिन कृष्ण के संबंध के बिना कोई भी चीज को देखोगे तो क्या होगा? कितना भी अच्छा भी क्यों ना हो वो खराब है, ठीक है ना, कितना भी अच्छा हो क्यों भी खराब है, बिकॉज वो दिव्य नहीं है। यथेतार्थम न प्रतीय चात्मे तम विद्यान आत्मनो माया मिथावास चतुश्लोकी भागवत में श्लोक आता है। रितेतार्थम, अगर कोई वस्तु को कृष्ण के संबंध के बिना देखोगे, कृष्ण के अर्थ के बिना देखोगे तो क्या होगा वो, तो उसको माया मानना चाहिए। माया का परिभाषा इस श्लोक में दिया गया है। रितेदार्थम यत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मने तम विद्यात, उसको जानो, तम विद्यात उसको जानो, क्या जानो, मायाम आत्मनो मायाम, इसको माया जानो। कृष्ण के संबंध के बिना अगर कोई वस्तु को देखोगे, माया वस्तु ही नहीं, व्यक्ति को भी, घटना को भी, परिस्थिति को भी, हर एक वस्तु को, हर एक व्यक्ति को, हर एक घटना को, हर एक प्रतिष्ठा परिस्थिति को, हर एक हमारे हृदय में जागृत हुए भावना को, कृष्ण को केंद्र में रखे हुए देखो, कृष्ण के संबंध में देखो, तो वो दिव्य है। अगर कृष्ण के संबंध के बिना अगर मंदिर को भी देखोगे तो बहुत ही है, अगर कृष्ण के संबंध के साथ अपने घर को भी देखोगे तो मंदिर हो जाता है। तो ये दिव्य दृष्टि जो है उसको ही डेवलप करने के, उसको ही हमको विकसित करने के लिए हम ये साधना करते हैं, साधना करते हैं, सेवा करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सबका उद्देश्य क्या है, ताकि हमको ये दिव्य चक्षु प्राप्त हो, ताकि प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक व्यक्ति को, सबको दिव्य दृष्टिकोण से हम देख सके। तो इधर सरस्वती जी जो है क्या देख रही है, इंद्र का कृष्ण के प्रति गाली है, डांट है, उसको क्या कर रही है, वो भी दिव्य दृष्टिकोण से देख रही है। तो वैसे शास्त्रों में भी, आचार्यों ने भी ऐसा ऐसा अनेकों अनेकों प्रकार के कार्य किया। कभी कभी मायावादी लोग एक बात बता देते हैं, एक एक स्टेटमेंट देते हैं, कृष्ण का हाथ पैर नहीं है, मायावादी लोग कहे हाथ पैर नहीं है, निर्गुणम ऐसा। तो वैष्णव आचार्य कहते हैं सही बात है, आप जो कह रहे हैं एकदम बिल्कुल सही है, इनके पास भौतिक हाथ पैर नहीं है। ये भी देखा जाए एक प्रकार का सारस्वत अर्थी है। सारस्वत अर्थ मतलब वास्तविक व्याख्या, हर एक चीज का वास्तविक व्याख्या। जैसे आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य लीजिएगा, उस श्लोक में कुछ कहा जाता है लेकिन उसकी तात्पर्य में देखोगे एकदम ठीक उल्टा रहता है, लेकिन आप देखोगे अरे ऐसे कैसे लिख दिया प्रभुपाद जी, बड़े बड़े विद्वान लोग ऐसे कहते हैं कि आपका भगवद गीता जो है प्रभुपाद जी ने हर चीज जहाँ कर्म लिखा है नीचे भक्ति लिख देते हैं, उधर योग लिखता है भक्ति लिखते हैं, हर जगह भक्ति भक्ति लिखते हैं, क्या है उनको मालूम नहीं है। प्रभुपाद जी को व्याख्या क्या है, भक्ति वेदांत परपोर्ट्स, यानी इस वैदिक साहित्य में चाहे आयुर्वेद हो, धनुर्वेद हो, चाहे वो कुछ भी हो, वेदांत हो, हर चीज का कंक्लूशन भक्ति है। हर एक श्लोक का, वेदों के हर एक शब्द का एकमात्र निर्णय है वो है भक्ति, कृष्ण के प्रति भक्ति। आदेच मध्येच अंत्येच सर्वत्र हरेर गीयते, सर्वत्र। अगर मान लीजिए वेदों में कभी या कोई साहित्य भाषा में या धनुर्वेद में या आयुर्वेद में कोई एक एक, एक बात आई, एक लाइन, लेकिन एक भक्त जब उसको देखता है ये देखता है कि ये भक्ति को प्रतिपादित करने वाला है। लेकिन एक भौतिकवादी को आप मन मनाभ हो मत भक्तो ये श्लोक भी दे दो, वो क्या देखेगा, अच्छा मनमानी करना चाहिए ऐसे कृष्ण का, उसकी अपनी व्याख्या कुछ और होगी, भौतिकवादी की व्याख्या कुछ और होगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अपने जो व्याख्या है उपदेशामृत की व्याख्या के इंट्रोडक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखते हैं, याद है वो कौन सा लाइन है, कौन सा लाइन पढ़ा था उपदेशामृत में, कृष्ण भावना भाव, कृष्ण भावना किसके ऊपर आधारित है, हमारी मनोभावना के ऊपर आधारित है। कृष्ण भावना में प्रगति जो है हमारी मनोभावना के ऊपर आधारित है, पढ़ा कि नहीं। तो श्री प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस इज डिपेंडेंट ऑन वंस एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब मनोभावना। हम एक वस्तु को किस दृष्टिकोण से देखते हैं उसके ऊपर ही हमारी कृष्ण भक्ति की प्रगति है। देखिए हम बोलते हैं ना, जप के ऊपर कृष्ण कृष्ण प्रगति है, भागवत प्रदक प्रगति है, भक्तों का संग करने से प्रगति है, लेकिन ये सब चीजों के पीछे और एक महत्वपूर्ण चीज है, वो जानना चाहिए क्या है, वो मनोभावना के ऊपर हमारी प्रगति है। अगर भक्तों की संगति हमारी प्रगति होती है, विभीषण को कौन सा भक्तों की संगति था, कहाँ रहता था, असुरों के बीच में। अगर देखा जाए ये जो प्रहलाद महाराज कौन सी भक्तों की संगति थे बताओ, शबरी जो है कौन सी भागवत की विद्वान थी बताओ, नहीं कुछ नहीं था। लेकिन मनोभावना सबसे महत्वपूर्ण है, एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी मनोभावना जो है दिव्य स्तर में है, आध्यात्मिक स्तर में है, भौतिक चीज भी आध्यात्मिक हो जाता है, और हमारी भावना भौतिक है, आध्यात्मिक चीज भी भौतिक हो जाता है। तो इसलिए ट्राई टू चेंज योर कॉन्शियसनेस। भक्ति में एक ही चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, मनोभावना, या दूसरे शब्दों में मेरी चेतना। चेतना को ही ठीक करने के लिए है, चेतना ठीक है सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है चेतना ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। नहीं महल है, सब कुछ है एकदम बढ़िया है, लेकिन हमारी चेतना ठीक नहीं है तो क्या करेगा व्यक्ति, कोई भी चीज सही नहीं है उसको। इसलिए एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मनोभावना जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये जो सरस्वत अर्थ में हम देखते हैं कि इंद्र जो है वो गाली दे रहा है, और यही शोक जो है सरस्वती जी के लिए क्या हो रहा है, वो कृष्ण का गुणगान है। वाह, बड़ा महत्वपूर्ण ये पांच श्लोक है, तीसरा चौथा और पांचवा छठा और सातवा, ये पांच श्लोकों में हमने सारस्वत अर्थ हमने सीखा। जैसे इस श्लोक में देखा जाए इंद्र के अंदर क्रोध है, और क्रोध में जो संवर्तक बादल, भयभीत संवर्तक बादल आश्वासन दे रहा है, चिंता मत करो तुम जाओ, तुम्हारे पीछे मैं मरुद्गरण को लेके आऊंगा, अगर तुम कुछ होगा तो मैं देखभाल करूंगा, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सरस्वती देख रहे इंद्र जो है अपनी उत्सुकता को दिखा रहा है, हे संवर्तक तुम जाओ, तुम्हारे पीछे मैं भी आऊंगा, आके ऐरावत के साथ आऊंगा, मरुद्गणों के साथ में आऊंगा, ताकि रजवासियों को शीतलता प्रदान करेंगे और कृष्ण की दिव्य सुंदर जो लीला है हम दर्शन करेंगे। ये सारस्वत अर्थ है, ठीक है। हरे कृष्ण।